एक अमेरिका में रहने वाले कोच और प्लेयर के की एक सेइंग, एक कहावत वो बता रहे हैं ये कि अभी हम सब खेलने के तरीके के गुप्त रहस्य को अच्छे से जानते हैं और किसी भी गेम को खेल सकते हैं। उसके लिए ज्ञान जरूरी है, और ये कि ये बहुत सहज है, सरल है, अगर हम अपनी बुद्धि को एक कठपुतली ना बनने दें। ये लौकिक दुनिया की कहावत है। यहाँ पर ये कि जो बुद्धि है, अगर उसको हम बाहर के प्रभाव से मुक्त रखें तो रावण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे में सीता जो आत्मा है वो क्लियर रहती है, उस साफ रहता है उसकी बुद्धि में कि ये रावण राज्य में नहीं जाना है। प्रशांत भाई से स्वागत करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पर मिले हैं। सबका स्वागत है। प्रशांत भाई सबका स्वागत कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि हम दोबारा से मिल रहे हैं और अपने आप को तरोताजा कर सकते हैं अपने ज्ञान में, और एक दूसरे का हम यहाँ संगठन में सहायता कर सकते हैं। जैसे ही हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं तो हमारा अपना स्वयं का प्रसाद बढ़ के हमारी प्रगति होने लगती है। अच्छा लगेगा अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे और चैट बॉक्स में भी कुछ डालें, अपने विचार, अपना कुछ बताना चाहें या कुछ प्रश्न पूछना चाहें। ये बहुत अच्छा है कि अगर हम शुरुआत करने से पहले कुछ ध्यान के क्षण उत्पन्न करें। हमारा जो प्रोसीजर है उसका पहला कदम ये कि हम प्रकाश में आए, और ऐसे में हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बुद्धि इस्तेमाल करें और इस दुनिया की पूरी पहेली सुलझ जाती है, हम अज्ञानता में नहीं जाते हैं। हम जानते हैं कि पत्थर बुद्धि जो है वो बहुत जिद्दी है, हमको वापस उसी दुनिया में ले जाती है, मगर हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम चेक करते रहें कि हम श्रेष्ठ बुद्धि का बार बार इस्तेमाल करते रहें। और ये अलौकिक आयाम में जो कि कहानी की दुनिया से परे है, वो हमारे लिए एकदम क्लियर और एकदम सहज हो जाती है, और हमारी जिंदगी में जो ज्यादा आयाम जरूरत से ज्यादा होना चाहिए वो अलौकिक ही है। हम उस आयाम को देखते हैं तो जानते हैं कि यही मेन मुख्य आयाम हमारी हम आत्माओं का है, और हम जानते हैं कि इस पुरानी दुनिया से परे का आयाम यही हमारा स्थायी घर है, और यही हमारी मौजूदगी उपस्थिति है, सत्य स्वरूप है, और यही हमको हेल्प करता है इस पूरे के पूरे स्थूल वतन को पहचानने में। आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ एक कहानी का हिस्सा है, और इसका मतलब ये कि ये सच में एक कहानी है, और ये किसी और कहानी से अलग नहीं है। तो सो जो भूतकाल में हुआ वो सबका सब कहानी है। इसका एकदम आपको परिणाम क्या मिलता है कि अगर हम इसको कहानी की तरह देखें कि ये बहुत छोटी हो जाती है, सब कुछ छोटा हो लगने लगता है, तो हमें समझ में आता है हम अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को इस छोटी छोटी बातों में क्यों बर्बाद कर रहे हैं। हम तरह तरह के यहाँ पर तरीके देखते हैं व्यवहार के, यहाँ पर तरह तरह की लालसाएं हैं, मगर जब हम समझ जाते हैं तो हमें ये कहानी छोटी लगने लगती है और ये रावण उसका उसकी वृत्ति भी छोटी लगने लगती है। तो पारस को इस्तेमाल कर हम इस कहानी से दूर निकलते, परे निकलते हैं। और परे है प्रकाश की दुनिया, जहां की शांति है, पूर्णतः शांत, किसी तरह की आवाज नहीं। इस कहानी में बहुत कुछ चल रहा है, ये बिल्कुल स्थिर दुनिया है, पूर्णतः स्थिर। हम इस दुनिया को देखते हैं, इस आयाम को देखते हैं एक प्रकाश की दुनिया के रूप में और एक समय से परे की दुनिया है, परे का आयाम है, ये सदा रहता है। समय से परे कभी खत्म ना होने वाला, सदा रहने वाला, ना परिवर्तन होने वाला। और ये संसार है पूर्ण सुरक्षा का, सदा की सुरक्षा, सुरक्षित, और यही घर है। ये सत्य परिवार का घर है और ये सुप्रीम पिता का घर है। और हमने किया क्या, हमने सिर्फ श्रेष्ठ बुद्धि को इस्तेमाल किया और ऐसा लगता है जैसे कि हमने बहुत बड़ी लॉटरी हमें मिल गई हो। हम यहाँ ध्यान की बात, मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, योग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं सत्य घर का, जो कि सत्य परिवार का है। हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं अजर अमर आयाम की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं, संसार भगवान के साथ, भगवान का घर। ऐसा संसार जो कि बहुत उत्तम है, यहाँ पर कुछ भी, इस आयाम में कुछ भी डाउट या शंका या संशय का नहीं। यहाँ की वाइब्रेशंस, तरंगे शांति की है और इस स्थूल वतन की दुनिया में ये तरंगे नहीं मिलती, होती ही नहीं। और ये सत्य स्वरूप का घर संसार है, सत्य परिवार का संसार है और ये वातावरण पारस कहलाता है। और यहाँ बात कर रहे हैं अंदर के वातावरण की, जो कि आत्मा के फेवर में है। जैसे कि पत्थर बुद्धि जो है, पत्थर का वातावरण जो है वो अहंकार का है, ईगो का है, ये देह अभिमान का वातावरण है, मगर पारस वातावरण ये सत्य परिवार का है, सत्य पिता का है और अजर अमर और सूक्ष्मता का संसार है। और यही यही आत्मा के फेवर में है। और यही आत्मा को आत्माभिमानी बनने में हेल्प करता है। आत्मा जागृत होती है, और जब ये एक बार जागृत हो जाती है तो उसके लिए ये अदृश्य मौजूदगी उपस्थिति आसान हो जाती है, और ये उसके लिए नॉर्मल है, साधारण है कि वो अजर है। और ये नॉर्मल है कि वो ऊपर के आयाम की है, ये कि वो इस परिवार का हिस्सा है जो उस आयाम का है। और ये नॉर्मल है उस आत्मा के लिए कि वो उस आयाम की है और जो कहानी से परे है, और ये कि वो इस स्टोरी वर्ल्ड यानी कि कहानी की दुनिया से कि नहीं हो सकती। यहाँ पर कठपुतली और डॉल्स की कहानी चल रही है। आत्मा जो जागृत है उसके लिए बहुत साधारण है कि वो इस आयाम की है और इस परिवार से, कहानी की दुनिया के से परे की दुनिया के परिवार की है। हम जानते हैं, जब ये सब जान जाते हैं कि ये बहुत सुंदर सत्य है, और ये कि यहाँ रहने वाला हर कोई ये बात जानता है। भगवान का घर, भगवान के साथ का घर, सत्य परिवार का घर, सत्य का घर। और जो आत्मा जागृत है वो जानती है कि उसकी सत्य व्यक्तित्व है, सत्य मौजूदगी है, और उसको अच्छा बनने के लिए कोई बहाना नहीं ढूंढना पड़ता। वो है ही श्रेष्ठ, साधारणते महान है। जैसे जैसे हम अपनी दुनिया में आगे बढ़ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, आकाश में, इस धरती पर, हम अपने आप को याद दिलाते हैं इस सुंदर सत्य की। धन्यवाद। हमने बहुत बार ये चर्चा की है कि ये मस्तिष्क की, इस मस्तिष्क के दो हिस्से हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। हम फिर दोबारा से उसको उठाएंगे। आज हम बात करेंगे मस्तिष्क से संबंधित एक विषय के बारे में बात करेंगे, और आप स्क्रीन पर, व्हाइट बोर्ड पर देखें। प्रशांत भाई जब शुरुआत करते हैं तो व्हाइट बोर्ड से करते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे बिलियंस में बहुत सारी नर्व्स हैं जिनको कि हम वायर्स, तार कहेंगे, जैसे कि तारें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तरह तरह से बिजली के लिए। इसी तरह से बिल्कुल हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे, मस्तिष्क और हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स हैं जो किसी ना किसी तरह से अपने हर किसी से जुड़ी हैं। तो हम इस मस्तिष्क में चल रही इन नर्व्स को कहते हैं कि ये न्यूरल सर्किट है। जैसे कि तारों का सर्किट होता है, ऐसे ही नर्व्स का सर्किट। जैसे कि एक सर्किट हर हरी लाइट से जुड़ा हो और दूसरा सर्किट जो है लाल लाइट से जुड़ा हो, जैसे कि हम ये स्विच किसी एक नॉब को घुमाते हैं तो हरी लाइट जल जाती है, तो इस तरह से बहुत सारी नॉब्स हैं, उन सबको कंट्रोल करने वाला उसके अधीन जो है बहुत सारे ऐसे सर्किट हैं। एक सर्किट को कहते हैं उसमें इन सर एक एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक सर्किट है जो कि न्यूट्रिशन पर है, एक डिफेंस, और फिर एक है रिप्रोडक्शन पैदावार का। जैसे कि एक कुत्ता है घर में, उसके आसपास कहीं खाना है, आप देख सकते हैं कैसे वो अपनी पूंछ को हिलाता है, कैसे अपनी आंखें घुमाता है, कैसे अपने कान चलाता है, कि अंदर ही अंदर से वो कैसे प्रक्रिया जिताता है इस खाने को देख के, जो कि उसके लिए एकदम साधारण है, नॉर्मल है, मगर उसके अगर मस्तिष्क की को देखा जाए, उसकी स्टडी की जाए, तो देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नर्व्स न्यूरल ट्रैक्स हैं, रास्ते हैं, जो जिनसे कि हमें पता चलता है कि वो खाने के लिए कैसे अपने आप उसका उसके रिएक्शन आने लगते हैं। अगर एक खाने के आगे एक दरवाजा है जो बंद है, तो वो कैसे उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। अगर वहां पर किसी तरह का खतरा है तो वो खाना खाने में उसका इंटरेस्ट चला जाता है और वो भौंकता है, उस तरफ जाता है जहां की उसको खतरा दिखाई देता है, वो बिल्कुल अलग बन जाता है। तो इस तरह से एक अलग तरह का न्यूरल सर्किट, ना नसों का, नर्व्स का एक अलग ही को देखते हैं। कुछ ऐसा सर्किट जो कि एनिमल्स में, जानवरों में नहीं होता है। कोई टाइप करना चाहते हैं कि जो जानवरों में नहीं होता है, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी ने कहा हैप्पीनेस लर्निंग कि ज्ञान से कनेक्टेड या बुद्धि का, प्रशांत भाई कह रहे हैं एक ऐसा सर्किट जो कि वर्क सर्किट, काम करने वाला सर्किट कहलाता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स मंडे से फ्राइडे तक उस वर्क सर्किट में रहते हैं, एक अलग ही तरह का सर्किट, हम हमेशा काम के लिए ही हमारा वो सर्किट काम करता है, जहाँ फाइल्स और तरह तरह का फिजिकल एक्टिविटीज हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड उसके बारे में हमारा वो सर्किट काम करते हैं। जैसे कि कोई एक ह्यूमन बीइंग वो अपने काम के लिए जा रहा है, वो ड्राइवर ड्राइविंग करके जा रहा है, जैसे कि आप जा रहे हैं काम के लिए, तो हो सकता है आप डिफेंस सर्किट में हो कि वहां जाकर किससे लड़ाई करनी होगी किसी बात पर, आप रास्ते में जाते हुए इंजॉय नहीं करते हैं। इस डिफेंस सर्किट में एक तरह का पनिशमेंट हो जाता है, एक देश भी जो ऐसी ऐसा देश जो कि सिर्फ अपने डिफेंस पर, अपनी सेना पर ही ज्यादा पैसा लगाता है, वो अपने जनता के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए इतना पैसा नहीं लगाता। एक ऐसा सर्किट है कि जो काम करता है फाइट और फ्लाइट मोड में, ये कि मैं लड़ाई करूंगा इस बात पर, जैसे कि अपनी बॉस से किसी बात में बहस करूंगा, या फ्लाइट मतलब कि छोड़ दूंगा इस बात को। ये आप एनिमल्स में भी देखते हैं, प्ले, जैसे कि डॉग्स, उनके साथ अगर आप खेलो तो वो बच्चों की तरह वो खेलने को आतुर रहते हैं, जैसे कि बच्चे। जैसे कि एक बच्चे के लिए 8 महीने से लेकर 8 साल के बच्चे तक के लिए सिर्फ खेल ही उसके दिमाग में रहता है। वो तरह तरह से लड़ते हुए भी अपने साथियों के साथ खेलते रहते हैं। ऐसे ही डॉग्स, वो भी इस तरह से हमेशा खेलने के लिए तैयार रहते हैं। वो आपस में एक दूसरे को ऊपर उछल कूद रहे हैं, वो लड़ नहीं रहे, वो खेल रहे हैं। खेल में ये पैराडॉक्स है कि आप प्रतियोगी हैं एक दूसरे के खेल में, मगर उसी वक्त आप जब प्रतियोगिता के रूप में इस खेल को खेल रहे हैं, आपको याद है कि आपकी बड़ी जिंदगी क्या है, कि आप ये खेल ही तो है, और आप जानते हैं या तो आप हारेंगे या जीतेंगे, और यही इस खेल की आश्चर्यजनक बात है। जैसे कि आप खेल रहे हैं, दूसरा प्रतियोगी आपको हराना चाहता है, और मगर फिर भी आप जानते हैं कि ये खेल है और आप हंसी खुशी ये खेलते हैं। इसको स्पोर्ट्समैनशिप कहते हैं, कि खेल को खेल की तरह लेना। आप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरे तन मन से उस खेल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, मगर किसी तरह का कोई उसके अगेंस्ट लड़ाई का भाव नहीं है। मगर ऐसा होता है कि कंपनीज में, मैनेजमेंट में ऐसे लोग होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं मैनेजमेंट में, ऐसे लोग जो कि 18-20 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं, उनके पास लोग आते हैं ऐसे मैनेजमेंट के सामने। कुछ लोग हैं जो जाना नहीं चाहते वहां काम करने के लिए, और जैसे ही 5 बजे काम खत्म होता है, घंटी बजती है, वो जल्दी से उस कंपनी से, ऑफिस से बाहर निकलकर भागते हैं। तो अगर मैनेजमेंट में कोई इसको देख रहा है तो उसको लगेगा कि ये कैसा है कि वो बिल्डिंग में आते हैं, काम करते हैं, और मगर जाते टाइम वो बहुत खुश है, मगर आते हुए वो बहुत अनमने मन से आते हैं। उसने एक फुटबॉल का फील्ड बनाया अपने एम्प्लॉयज के लिए कि वो खेले उसमें, और उसने देखा कि वो बीच बीच में जब वो खेल में अपने आप को आराम देते हैं और फिर काम पर आते हैं, तो देखा उसने देखा कि कुछ सालों बाद उसका काम बहुत बढ़ गया था। कि खेलने के बाद वो एक अलग तरह की ऊर्जा से अपने काम में लग जाते थे, हालांकि वो आप बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं, और खेल में भी वो पूरा मन लगा के खेल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरी टीम पर गोल करना चाह रहे हैं, मगर फिर जब वो काम पर आते तो एक नई ऊर्जा से आते और इससे उसका कंपनी का बहुत अच्छा काम बढ़ गया, उसका और ज्यादा पॉपुलर होती गई वो मैनेजमेंट। मगर खेल में अगर आप लूज भी कर जाते हैं, हार भी जाते हैं, तो भी आप जो है उसको एक अच्छे तरीके से लेते हैं, उसको फाइट और उस फाइट के मोड में नहीं लेते। मगर क्यों है ऐसा, ऐसी वृत्ति, इसके बारे में कोई बताना चाहेंगे क्यों है ऐसी वृत्ति खेल में, कि अगर एक टीम का 0 स्कोर भी है तब भी वो उसमें ओके हैं, क्योंकि वो मन से खेले हैं या कुछ और, ये वो क्या बहुत सीरियस नहीं होते खेलने के लिए, आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो इसको इतना, इस खेल को इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते, मगर खेलते पूरे जोर शोर से, पूरी मेहनत से हैं जीतने के लिए। किसी ने कहा कि निडर हो जाते हैं, सुरक्षित व्यक्तित्व की वजह से उनकी एक डिटैच्ड फीलिंग होती है कि ये तो एक खेल है। और किसी ने कहा कि रिजल्ट के हारे या जीते उससे अटैचमेंट नहीं है, और कोई कोई इसको भाग्य पर छोड़ देते हैं। किसी ने कहा ये अस्थाई है, प्रशांत भाई कह रहे हैं जब आप खेलते हैं तो आप जानते हैं 1 घंटे के लिए खेल रहे हैं, आप जानते हैं कि इस खेल के अलावा भी आपकी जिंदगी है, अगर आप हार भी जाते हैं इस 1 घंटे में, आप जानते हैं आपकी जिंदगी इससे प्रभावित नहीं होगी, आप हारे तब भी आप सुरक्षित हैं, कुछ भी बदलता नहीं है, आप इस गेम में हारने के बाद भी आप जानते हैं आपका जॉब भी सुरक्षित है, आपका परिवार भी सुरक्षित है, तो आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, और यही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को सुरक्षित समझें। और ऐसे में वो आप उस शांति के आयाम में हैं, और आप खेलते भी पूरी उत्साह से हैं। मगर अगर आप इसमें इतना डूबते चले जाएं कि एक एक गोल हारने के बाद अगर आपको बुरा लगने लगे, तो ये आपकी कमजोरी है। कोई भी एक व्यक्ति अगर इस बात में डूब जाता है कि मेरे को एक एक गोल मेरी टीम पर हो गया, और आप नर्वस होने लगे, आप हारने लगे और आप इसको महसूस करने लगे, तो मानसिक तौर पर आप हारते चले जा रहे हैं, आप उस अलग आयाम में चले जाते हैं जहां पर फन और खुशी जो उस गेम में थी वो आपको नहीं मिलती है, आप गुस्सा होने लगते हैं, और आप कई बार अगर किसी ने हारा और कोई बेहोश भी हो जाता है, कोई रोने लगता है, कोई इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं इस गेम के रिजल्ट से हारने पर कि उनको इतना बुरा लग जाता है। यहाँ पर ये समझने की बात बात है कि ये कैसे संभव है, मगर यहाँ पर ये समझना होगा कि हमको इससे बाहर निकलना है, तो सबसे पहली बात है यहाँ पर पहला पाठ हमारे लिए समझने के लिए है हम अपने पूरे माप चित्र को समझें। मैं सुरक्षित हूं, मैं और मेरा परिवार और मेरा घर सुरक्षित है, मेरे संबंध शाश्वत हैं, जो कुछ भी मेरा है वो सब सुरक्षित है, श्रेष्ठ है और शाश्वत है। और ये कि ये खेल इस कैंप में मैं थोड़े समय के लिए हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और ये एक खेल है और इसमें कई जन्म हो सकते हैं, पुनर्जन्म हो सकते हैं, कई साल हो सकते हैं इस खेल में। मगर उस बड़े मैप में ये बहुत छोटा सा है। हम मुरली में एक सुनते हैं कि हमारा ये जो बुद्धि है श्रेष्ठ पारस के साथ साथ विशाल होना चाहिए, इस स्थूल आयाम से परे का परे को समझने वाला। और यहाँ पर इस आयाम पर ये ध्यान लगाना और अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को सुधारना, ध्यान लगाना अच्छा है। हम कुछ मिनट्स के लिए अपने आप को श्रेष्ठ स्थिति में रखते हैं, अच्छा है, मगर ये केवल शुरुआत है इसके लिए। और ये समझना कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं और मेरा संसार सुरक्षित है, मुझे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंच सकता, मैं किसी भी तरह के नुकसान से परे हूं। और जैसे ही आपको ये समझ आ जाता है, तब अगर आप इस स्थूल वतन में आते हैं तो आपको ये बताने की ये जरूरत नहीं है कि ये खेल है, कि यहाँ ये सब अस्थाई है। ये कि आपको इन सब की सबको चीजों की जरूरत नहीं है इस मोमेंट में, इस क्षण में। आप जानते हैं कि ये वर्तमान ही सब कुछ है और यहाँ पर ये सब कुछ स्थूल में अस्थाई है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया कि आप विशाल बुद्धि को इस्तेमाल कर जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नक्शा है, एक बहुत बड़ा मैप है इस छोटे से मैप से परे, और ये आपको पहले से पता है। और जब आप और आपको ये पता है कि आपकी एक सत्य परिवार है, आपका आपका एक बड़ा परिवार है जो सत्य परिवार है, और ये जब अगर समझ जाते हैं कि ये जो स्थूल दुनिया है ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, तो जब आपको समझ आ जाता है तो आपको इसमें किसी भी तरह का दुख नहीं पहुंचता है। उदाहरण दे रहे हैं प्रशांत भाई कि आपके पास दो पेन है, एक पेन उसमें से टूट जाता है तो आप जानते हैं कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन और है, और ये स्थूल दुनिया का जितना भी अनुभव है उसको आप जानते हैं कि ये एक अलग तरह का एक्स्ट्रा संसार है, एक गिफ्ट है। कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें या कुछ जोड़ना चाहते हैं? कभी आपने कहा कि ध्यान जो है कि आपको स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए ध्यान शुरुआत है क्या? तो प्रशांत भाई कह रहे हैं हाँ, ये एक शुरुआत करने का अच्छा है कि आप ध्यान लगाएं इसको। हाँ, ये रेफरेंस की तरह ले सकते हैं इसको, मगर ये आपके लिए नेचुरल होना चाहिए, बिल्कुल कुदरती हो जाए कि आप उसी में रहें, उस स्थिति में रहें। ये नहीं कि आप किसी जगह पर जाकर, किसी घर में जाकर आपको ये मेडिटेशन करना है। हमारा सत्य स्वरूप जो है हम सबका, वो अलौकिक है। वही जो आप आपको लाल में रंग में इस माप चित्र में दिखाया है प्रशांत भाई ने, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है कि हमें हम इस घर के हैं। ये कैसे पता चले कि हम सही तरह से स्थिर हो रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और हम अपनी शक्ति को जमा कर रहे हैं। हम कहीं भी हों, जैसे ही हम शुरुआत करते हैं हमको ये ध्यान के क्षण उत्पन्न करने हैं बार बार, और हमको समझना है कि ये बेहद की बुद्धि, पारस बुद्धि, विशाल बुद्धि, इन सब बातों को समझने लगते हैं। तब हर मिनट जो आप इन सब बातों से के साथ काम कर रहे हैं तो हम कमाई कर रहे हैं, और ये छोटे छोटे हमारे टूल्स हैं, इनके साथ खेलें, तब आपको समझ में आएगा कि ये नाशवान स्थिति और अमर स्थिति क्या है, पारस क्या है। तो इन सब का मनन, चिंतन, खेल जो है, इन सब शब्दों का उनको अनुभव में लाना, वही आ, आ, हेल्प करेगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, क्योंकि वो तो बहुत बिजी हैं। और ज्यादातर इस ड्रामा की कहानी की सिचुएशन में ही बिजी रहते हैं किसी ना किसी तरह से, मगर हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इस स्पाइरल में नीचे की तरफ नहीं जाना, हमें पारस को देखकर अपनी स्थिति को नॉरिश करना है, उसको बढ़ाना है। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि इस टाइम पे हमको ये श्रेष्ठ बुद्धि को आ, आ, के मसल्स को बढ़ाना है, कोई ऐसी रेस नहीं लगानी है, मगर ये जो ध्यान के क्षणों की बात हुई उनको रिपीटेडली करना है, बार बार करना है, वही हमारी श्रेष्ठ और पारस बुद्धि बनाएगा। ऐसा लगता है, किसी ने कमेंट किया कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आत्मा बहुत टाइम से यहाँ पर है, तो हमें अपनी चेतना जो है हम भूल गए हैं। इस समय समय के हिसाब से इस दुनिया पर हम कोई पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत बार हमने ये सब किया है, मगर जैसे ही हम इस बात से परे होते हैं तब ये लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है हमें यहाँ। तो ये पूरी दुनिया है जैसे एक एपेरेटिस की तरह है, जैसे कि यहाँ कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि किचन में काम कर रहे हैं, आप अगर आप कुकिंग जानते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। जैसे कि एक सर्जन, उसको वो हार्ट सर्जन करता है, बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन करता है वो सर्जन, और कई बार बड़े बड़े ऑपरेशन में बहुत छोटा सा कट लगाते हैं, जैसे कि टांग में जरा सा कट लगा के और हार्ट का ऑपरेशन कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ठीक हो तो एक जो असिस्टेंट है, सहयोगी है डॉक्टर का, वो भी कर सकता है इसको। और ऐसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स अगर रिफाइंड होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हम थोड़े से समय में ही पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं होंगे तो बेस्ट से बेस्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्जन जो है किसी भी तरह के ऑपरेशन को अच्छी तरह से, सही तरह से नहीं कर पाएगा। आपको सही तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि अब हम इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल में हैं, तो हमें राइट इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बड़ा आध्यात्मिक जो संसार है, ये धर्म से कनेक्टेड जो है, वो सबके सब जितना भी अभ्यास कर रहे हैं वो पत्थर बुद्धि से कर रहे हैं, कोई भी धर्म हो। और ये पत्थर बुद्धि जो है वही इस बॉक्स, ये जो स्थूल बतन है, उसी में काम करता है। ऐसे में आप इस ड्रामा में चल रही कहानी में फंसे हुए हैं और उसको इतना बड़ा बना देते हैं, और ये पत्थर बुद्धि जो है आपको बाहर नहीं निकाल सकता, छोटी से छोटी खेल से भी वो आपको बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आप टेनिस का गेम खेल रहा है कोई, अगर उसको देखते हैं कि वो किसी तरह से स्ट्रेस्ड है, तो वो अच्छा खेल नहीं खेल सकता। मगर लाइफ जो यहाँ पर चल रही है, वहां पर अगर आप हर चीज को से अटैच हो जाते हैं, कि हर तरह से प्रभावित हो जाते हैं, तब वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। अगर हमको आध्यात्मिक किसी तरह का पुरुषार्थ करना है, तो हमको पारस को स्ट्रांग बनाना होगा। अब इस स्थूल वतन पर आप देखें, तो ये पत्थर बुद्धि ही, पत्थर वातावरण ही पूरी तरह से सबके सब इसी में फंसे हुए हैं। यहाँ पर पत्थर बुद्धि से ही हम अपना बिजनेस, अपना हेल्थ, स्वास्थ्य, हर तरह से अच्छा करना चाहते हैं, और उसी में ही एनग्रॉस्ड हैं, उसी में फंसे हुए हैं। और पत्थर की वजह से ही हमको हम जो खेल का स्पिरिट है, जो स्पोर्ट्समैनशिप है, उसमें उसे बाहर निकाल देता है। मगर हमको उच्चतम चेतना को ही नॉरिश करना होगा और अपने पारस को स्ट्रांग बनाना होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि आप के कोई मसल्स कमजोर हैं, तो आप उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं तरह तरह के। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप इतना स्ट्रांग बना सकते हैं अपने मसल्स को कि आप ओलंपिक्स में भी भाग ले सकते हैं। मगर यहाँ पर हमें जानना होगा कि हमको अपने पारस को स्ट्रांग बनाने के लिए पारस का इस्तेमाल करना होगा, उसको अभ्यास में लाना होगा। तो ये बुद्धि मता की बात है कि हमको अपना पारस को स्ट्रांग बनाना होगा। और अगर आप अपने पारस को इस्तेमाल कर कुछ कुछ मिनट ध्यान के बार बार बना पाते हैं, तो आपको अपने आप को शाबाशी देना होगा, अपने आप को बधाई देना होगा। अगर हम स्टोरी स्टोरी की बात करते हैं, तो वो उसमें फंस जाएंगे। आप इसको ऐसे लीजिए कि एक छोटी सी कहानी है, कि मैं इससे परे हूं। मगर अगर आप उसी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब आध्यात्मिक विचार से जुड़े नहीं हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं, हमारा लक्ष्य है इस कहानी से परे देखना। हम कहते हैं कि हम गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं जीतने के लिए, मगर यहाँ पर सबसे पहले तो गेम को जानना होगा कि गेम क्या है। कोई कुछ कहना चाहते हैं? कैसे अहंकार कभी कभी किसी स्तर पर ये ईगो हावी हो जाती है और इस खेल को खेल नहीं समझने देती है। किसी ने कहा कि हम पारस बुद्धि को जो है वो फरिश्ते यूज करते हैं और पत्थर को रावण यूज करता है। ये बहुत उत्साह देने वाला नहीं, मगर हमें ये कहना होगा कि पारस जो है वो फेवर करता है सोल को, वही आपको चेतना में लाता है, कॉन्शियस सोल बनाता है, जागृत आत्मा बनाता है। हम सबके पास पारस है, और हमको हर बात शुरुआत की शुरुआत पारस से करनी होगी। और ये कि पत्थर जो है रावण को फेवर करता है, अगर पत्थर का इस्तेमाल करते हैं तो और पत्थर बुद्धि बनती चली जाती है, और ईगो बढ़ता चला जाता है, अहंकार बढ़ता चला जाता है। और इसी क्षण में हमको पारस को लाना होगा। कुछ और मिनट हम अभ्यास के ध्यान के क्षण बनाते हैं। पूरा समय हमारा पूरा का पूरा पुरुषार्थ रहता है कि हम इस वातावरण से बाहर निकले, इस पत्थर वातावरण से, रावण अहंकार जिसमें कि हम फंसे हुए हैं पूरी तरह से, पूरी तरह से। तो हमारा लक्ष्य है इससे बाहर निकलना, चाहे हमें छोटे 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 छोटा छोटा ही अनुभव हो इनसे, तो हमें करते रहना है और ये बढ़ता चला जाएगा अनुभव। तो अब एक उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य जॉन की बात करते हैं जो स्कूल में है। वो एक स्कूल ड्रामा में मिस्टर यूनिवर्स का पार्ट प्ले कर रहा है। बहुत अच्छा ड्रामा है, मगर जॉन जब घर वापस आता है तो वो एक जॉन की तरह आता है कि वो जॉन है ना कि मिस्टर यूनिवर्स। मिस्टर यूनिवर्स बस वो उस ड्रामा में स्कूल में ही है, घर में नहीं। बहुत अच्छी एक्टिंग वो करता है मिस्टर यूनिवर्स की, मगर घर आके वो अपनी मम्मी डैडी के साथ जॉन की तरह रहता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये ड्रामा जो कि चल रहा है, ज्ञान यही है कि ये ड्रामा है, जैसे कि प्रशांत अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी ड्रामा है। और अदृश्य अभिनेता वो इस ड्रामा से परे है। और वो उस दुनिया में शांति में बहुत खुश है। अदृश्य अभिनेता और ये अदृश्य अभिनेता अपने आप को एक बिंदु के रूप में, एक ज्योति बिंदु के रूप में देखकर बहुत खुश है। और इस ड्रामा में कितना विस्तार है, तरह तरह के यहाँ पर वस्तुएं हैं, मगर ड्रामा से परे कितनी साधारणता है। बहुत खुश है अपने सत्य परिवार के साथ, और वो सारा परिवार एक छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु की तरह है। सबके अलग अलग पार्ट हैं, वो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मगर इस पार्ट्स के परे वो छोटे छोटे बिंदु हैं और वो सब के सब सत्य संसार में हैं। और ये जो यहाँ पर ड्रामा चल रहा है वो उससे परे है। अदृश्य अभिनेता इतना खुश है, वो इस परे की दुनिया की मिठास में लिप्त है। वो जानता है ये शाश्वत दुनिया, ये सत्य परिवार, शाश्वत परिवार बहुत खुश है अपने सत्य पिता के साथ। वो एक बिंदु के प्रतिबिंब में है। वो स्टेज पर हीरो का पार्ट प्ले करता है, उसको याद किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, हर कोई पूजता है उसको। और वो स्टेज पर अब भी अपने आप को एक बिंदु की तरह देखता है। और वो जानता है वो किसी भी तरह से अलग नहीं है, और यही उसकी बुद्धिमत्ता है और यही रेफरेंस, इसी संदर्भ में वो अपने को और अन्य को देखता है। अब स्टेज पर आपको अपने आप को देखना है कि इस पार्ट से आप अपने आप को कितना परे देखते हैं। और यही बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता के संदर्भ की बात है। उच्चतम श्रेष्ठतम पिता वो एक खेल खेलते हैं, इस खेल में एक हीरो का पार्ट प्ले करते हैं, वो स्टेज से परे हैं। वो बहुत खुश है अपने आप को एक बिंदु रूप में देख, हर अन्य बिंदु की तरह। सत्य सत्य की कीमत जानते हैं, इस दुनिया की कीमत जानते हैं अदृश्य अभिनेता। वो इस एकांत को, इस दुनिया की शांत वातावरण को पहचानता है और उसकी वैल्यू करता है, और अपने इस परफॉर्मेंस, अपने इस अभिनय से परे जो कि स्टेज पर चल रहा है, छोटा हो या बड़ा हो ये ड्रामा है, मगर उसके पीछे बिल्कुल एकांत, पूर्ण शांति, स्थिरता का संसार, वो उसे बहुत अच्छा लगता है। और इस सत्य को जानकर वो बहुत खुश है। और उसको अच्छा लगता है कि ये सदा के लिए सुरक्षित संसार है। ड्रामा बहुत कुछ है, जैसे कि कैसी कहानी लिखी गई है, उसका अंत क्या है, मगर ड्रामा के पार पीछे शाश्वत है, अजर अमर है, सबके सब सुरक्षित हैं। और जैसे जैसे ये अदृश्य अभिनेता स्टेज पर दोबारा आता है, अपने इस बात के हिसाब से चलता रहता है वो अमंग उत्साह में आता है, खुशी से पार्ट प्ले करता है। वो बहुत सुरक्षित है, उसको अपने सुरक्षित संसार का पता है, अपने सत्य परिवार का पता है, सत्य पिता का, और यहाँ का संबंध सदा का है, अजर है, अमर
उसे
संबंध
पता
है।
है वो अनंतता का, इटर्निटी का, वो मुक्त है।
और जब वो
जब
सुरक्षित है,
वो अपने को सुरक्षित अनुभव करता है,
उसके संबंध अमर
उसे
है,
कुछ नहीं चाहिए स्टेज
उसको
से, ड्रामा
स्टेज से
से।
कुछ नहीं चाहिए,
और जब वो
और
स्टेज
इस
पर
ज्ञान
आता
के
है
साथ जब वो स्टेज पर
और
आता है,
वो
अपना पार्ट
अपना
प्ले
पार्ट
करता
प्ले
है,
करता है
तब उसके लिए ये सब फन है।
और उसका जो
उसका
समय है
इस
वो
स्टेज
स्टेज
पर
पर
उसका
आने के लिए
खेलने का
खुश
वक्त
है,
है, और
स्टेज
वो
से
बहुत
जाने के
खुश
लिए
है
खुश
स्टेज पर
है,
ये पार्ट प्ले करते
और हर
हुए,
एक का जो पार्ट है वो देखकर भी
और इस
अम्यूज्ड है,
खेल से वो
खुश है।
बहुत खुश है। यहाँ पर वो राजा का रोल निभाता है,
और ये जो किंग कॉन्ग का पार्ट है उससे भी जैसे वो एक आश्चर्यचकित होता है, अम्यूज्ड होता है, और हर एक मोमेंट जो स्टेज पर है वो एक गिफ्ट है, और वो एक आनंद के लिए बनाई गई है। और जो ड्रामा है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, और अगर कोई ड्रैगन है तो भी मतलब एक आनंद ही है। जैसे हम हमारी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, ऑन स्टेज हो मतलब स्टेज पे या स्टेज के बैकग्राउंड में, हम इस सुंदर सत्य में स्थित रहते हैं। शुक्रिया। अगर रूम्स के लिए थोड़ा समय देना है अभी, पोल क्वेश्चंस, पोल के प्रश्न पूछेंगे, और कुछ है तो देख सकते हैं, कुछ शेयर करना है, पूछना है। और हीरो पार्ट का क्वेश्चन है, हीरो पार्ट अर्थात क्या क्या वो स्टोरी के रिलेटेड है या पार्ट कैसे प्ले होना चाहिए उसके संबंधित है। हाँ, बहुत सुंदर। और भगवान भगवान है हम सबके लिए, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर पार्ट प्ले करता है, इसीलिए वह बहुत ही मतलब बहुत ही वंडरफुल सोल्स घर में भी होंगे, एज ए विचार का प्रयोग करने के लिए। वो कभी भी जैसे स्टेज पर नहीं आता, हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं, उनको याद नहीं करते जो स्टेज पर नहीं आते, परंतु यहाँ पर जो बीइंग है वो स्टेज के ऊपर आते हैं, और हीरो पार्ट जो है और ये जैसे कि वो हर एक को हैरेस करती है, राम आता है रावण को रिमूव करने के लिए और यह पार्ट वो प्ले करता है, हीरो पार्ट, और सभी इलनेस जो है रावण की वो जैसे कि हीरो पार्ट है। और जब वो पार्ट प्ले करते हैं भगवान, तो फिर उनको जैसे उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसको याद करते हैं। परंतु वो इतना अच्छा पार्ट प्ले करते हैं फिर भी वो जैसे साक्षी हो जाते हैं, मतलब वो समझते हैं कि यह एक खेल है। जैसे कि जॉन जो है वो फ्री रह सकता है, उसका जो पार्ट है मिस्टर यूनिवर्स का पार्ट, और फॉर परमात्मा ये जैसे कि एक पार्ट है, एक सुंदर अम्यूजिंग पार्ट है। तो स्कूल बॉय है फॉर एग्जांपल, वो एक पार्ट है लेकिन वो फ्री रहता है, हमें या हमें अपने आप को पूछना है कि हम सिर्फ हम किस बात में हम हैंग हो रहे हैं और वो लेट गो करना नहीं चाहते। मेरा, मैं, मेरा, ये सब जैसे कि मिक्स्ड है ड्रामा के साथ। अगर वो होता है, क्योंकि हम सही बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं और डिसीव हो जाते हैं, और जो डिसीव होता है और उनका पेनल्टीज है, और डिसेप्शन जो है वो पेनल्टी ब्रिंग करता है। और हमारे पास ऑप्शन है, विकल्प है सही इंस्ट्रूमेंट उपयोग करने का। ज्यादा हम उसका उपयोग करते हैं, हमें पारस चाहिए, हमें उसको स्ट्रांग बनाना है। भगवान यह कर सकता है क्योंकि वो खुद पारसनाथ है, और वह जैसे कि उसके पास एकदम पावरफुल पारस बुद्धि है। और जॉन भी ये कर सकता है क्योंकि उसकी बुद्धि, ये 30 मिनट का जो खेल है स्टेज पर मिस्टर यूनिवर्स का, वो समझ सकती है और इजी है, क्योंकि फिर वापस वो जॉन अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें आ जाता है, तो वो फ्री है अपने पार्ट से। और जो रावण राज्य है उसमें जैसे कि पत्थर, और सभी जैसे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से, पार्ट के हिसाब से। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास स्ट्रांग पारस चाहिए, और पिता की कंपनी, पिता का संग चाहिए, परमात्मा का संग चाहिए। और अभी तक हम पत्थर की रीति से, पत्थर बुद्धि के द्वारा वो करते थे, कैरेक्टर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। हमें एक्टर कॉन्शियसनेस में रहना है। बहुत ही मदद करता है ये कि भगवान जो है वो हीरो पार्ट प्ले करता है ड्रामा में। और ये जो आध्यात्मिक विजन है उसका इम्पैक्ट ग्रेट है। क्या इसका मतलब है कि सच्चा जो खेल है वो मन के लेवल पर चलता है, और हमें ये ध्यान रखना है पारस का यूज करने का, मतलब ये एक और खेल है, खेल के अंदर खेल है, एक बाहर का है एक अंदर का है। और हम जैसे कि एक अनंत खिलाड़ी है, इटर्नल प्लेयर से, और ये जो भौतिक दुनिया है वो भी एक खेल है, और रावण के द्वारा हारना वो भी हो रहा है, रावण को हराना वो भी हो रहा है, मतलब सभी गेम खेल रहे हैं और हम इस खेल को जीतना चाहते हैं, खेल के नियमों को समझ के और लाइटनेस के साथ, हल्के रहकर, मतलब हम सिंसियर भी है लेकिन मतलब हैप्पी भी है, फ्री है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पर क्रिकेट में अलग अलग खिलाड़ी है, तो जैसे कि बॉलर का जॉब है तो उसके ऊपर वो मतलब गुस्सा नहीं होता है, वो तो खेल खेल रहा है। तो हमारे पास भी ऐसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी है इस बड़े खेल में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो मतलब बीमार है, मेंटली रिटार्डेड है, तो उनके लिए ये एनी टिप्स है कोई, मतलब उनके लिए आप क्या कहेंगे? हर एक इस प्लेनेट पर और ये हर एक के लिए अप्लाई होता है, अच्छा ब्रेन है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, और जो समझते हैं बातों को, जो नहीं समझते हैं, और हमें इसके लिए समय निकालना है और हमें स्टार्ट करना है जहां पर भी हम खड़े हैं। एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल है यहाँ पर, वर्तमान समय में, कलयुग में, आयरन एज में, रिपोर्ट जो है वो बैंकरप्सी का है, मतलब सभी बैंकरप्ट है। तो पारस जो है वो सोल कॉन्शियसनेस एकदम मिनिमम है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता कम है, तो जैसे कि एक बैंकरप्ट की स्थिति है, और वो बीज है पारस, और पारस जो है वो हर बात का, हर एस्पेक्ट का बीज है, और आत्मिक स्थिति का भी बीज है। तो हमने ये इमेज देखा है कि छोटे छोटे जो स्मॉल आई है उसमें रावण जैसे डोमिनेंट है, परंतु बीज है, आत्मा का बीज है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देखते हैं पारस। हमारी पूरी गेम खेल है वो बीज के साथ काम करना, और विंटर के बाद जो बगीचे होते हैं वो जैसे कि बैरन हो जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन फार्मर्स को पता है कि वो वापस हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास अगर बीज हाथ में है वो इम्पोर्टेंट है, और हम उसे सही एनवायरनमेंट देते हैं, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो आप राइट साइड में रेड कलर का जो कर्व दिखाया है, वो जैसे कि जैसे जैसे हम सफल होते जाते हैं इस स्थिति में, तो हम हमारे ओरिजिनल आई, कैपिटल आई जो आप देख रहे हैं, ओरिजिनल स्वरूप में आते जाएंगे। हम मिनट बाय मिनट, इस एक मिनट में इस एनवायरनमेंट में हमें रहना है, और वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और वो बहुत ही जल्दी मोमेंट को गैदर करता है। और बहुत सुंदर, में भी थोड़ा हम पॉज करेंगे और आप क्वेश्चंस देंगे, प्रश्न देंगे। सबसे पहले पोल क्वेश्चन सबको देंगे, आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, हम हिंदी में पढ़ के दिखाते हैं कि आपने कितने संजीवनी क्लासेस अभी तक सुने हैं या लाइव अथवा तो रिकॉर्डिंग सुना है, उसका आपको जवाब देना है। आपके सामने तीन ऑप्शंस है, सभी 10 सेशन, 7 से 9 सेशन या कोई भी नहीं। आपने कितने संजीवनी सेशन सुने हैं, तो अगर आपको आता नहीं है तो चैट में आप लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, कितने संजीवनी सेशन आपने अभी तक सुने हैं, 10, 7 से 9 या कोई भी नहीं, या तो लाइव या तो रिकॉर्डिंग। तो आपके सामने रिजल्ट भी देखेंगे, करीबन 69% लोगों ने 10 सेशन कंप्लीट किए हुए हैं, 26% 7 से 9 सेशन और 4% कुछ भी नहीं। एक और प्रश्न है, क्या आपने लेफ्ट और राइट ब्रेन का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले दिखाया था वो आपने देखा है, हाँ या ना, जिसमें तो विंबलडन का जो एग्जाम्पल दिया था उसमें, क्या आपने वो पावर पॉइंट देखा है? आप चाहे तो चैट में भी लिख सकते हैं। शुक्रिया, रिजल्ट सामने है, 46% ने देखा है, 54% ने नहीं देखा है। शुक्रिया। प्रश्न भी रिफ्लेक्शन के लिए आप प्रश्न देंगे हमको। ये जो गेम है हमें जीतने के लिए प्ले करनी है। और सीरियस होके नहीं, लेकिन सिंसियर होके और एंजॉय करते हुए, लाइट रह के। चैट में प्रश्न लिख रहे हैं, तो इसके बाद ब्रेकआउट रूम्स होंगे 15-20 मिनट। और प्रश्न है, कैसे हम इस खेल को जीतने के लिए खेले लेकिन हम सीरियस भी ना हो। तो आपको अलग अलग रूम में रखा जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप गलत रूम में हैं तो आप हेल्प बटन दबाएंगे, तो उससे आपको एक व्यक्ति आएगा रूम में तो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। शुक्रिया। और हम ब्रिस्टल जाएंगे जो यूके का वेस्ट है, और हम अनुभव सुनेंगे। कॉन्स्टेनिया का हम अनुभव सुनेंगे। हमारा बहुत ही हम बहुत सुंदर चर्चा की, और कैसे बुद्धि के आधार से हम या तो जीवन एक फन है या बुद्धि के आधार से जीवन एक दुख है। और हम अच्छा तरह से अगर हम बुद्धि को यूज करते हैं, सही बुद्धि को, और अभी स्वाभाविक रीति से पत्थर बुद्धि डोमिनेंट है, और ईगो जो है वो फॉरएवर असुरक्षित है। और जैसे कि हम ईगो के साथ, मतलब जैसे हम बैटल को, युद्ध को खो देते हैं, ईगो जीत जाता है, तो जितना हम ट्राई करते हैं पत्थर बुद्धि से, तो और हम लूज करेंगे। तो हमें फिर फीलिंग आती है कि हम असफल ही है। अगर हमारे पास पारस बुद्धि है तो वो हमें एक कंप्लीट डिफरेंट प्रकार के संस्कार और टेंडेंसीज उत्पन्न होती है उससे। और उस जगह से अगर हम उस जगह से मन बहुत ही मुक्त फील कर सकता है, और हम अटैचमेंट्स को लेट गो कर सकते हैं, और जैसे आप लाइफ को जिएंगे, और जो ट्रैवलर होता है, यात्री होता है, वो सही में यात्रा मतलब लाइट ट्रैवल करता है, और मेहमान की जो स्मृति है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऊपर से आए हैं और यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। और हमारे पास कोई फियर नहीं है, और हम अच्छी तरह से कार्यक्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं। और ये भी एक नया अच्छा स्लोगन है कि दिल जितना महान है उतना मन भी अच्छा होगा। शुक्रिया, बहुत ही सुंदर आपने बताया। और अगर हम गलत बुद्धि का प्रयोग करते हैं, तो जैसे ईगो ने टेक ओवर किया है, तो बहुत ही आभार आपका। और अभी हम ईस्ट में जाएंगे। मार्गरेट का अनुभव सुनेंगे हम। एक पहले हमने सुना था कि खेलो जीतने के लिए, और अगर हमें बिजनेस के बारे में अगर हमको सीखना है तो वो आपको सिखाएंगे बिजनेस के बारे में, और चैंपियनशिप टीम होगी जो ये सिखाएगी, और आपके सामने ऐसी चीज लाएगी कि आप उसका प्रयोग कर सको। और एक मोमेंट आती है जहां पर हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और वहां जहां पर गेम का सेटअप होता है, खेल का सेटअप होता है, और जैसे प्रशांत भाई बता रहे थे और वो बोल जाते हैं कि ये गेम है और ये इतना अच्छा सेट किया था उस गेम में और बहुत ही सरल था अनुभव करना कि ये। और जैसे कि हम वॉशरूम जाते हैं तो फिर बाबा को हम कहते हैं बाबा इज जस्ट अ गेम, तो एक पॉइंट था जहां पर किसने गेम जीती थी खेल जीता था, एक पॉइंट था समय था जहां पर, और जो फेस था कि जिन्होंने जीता था उसका जो चेहरा था वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, शाइनिंग था, और हमारे साथ भी वो सेम है। बाबा ने हमें गेम के रूल्स सिखाए हैं और हमें अलग अलग टूल्स दे रहे हैं और पावर्स हमें देते हैं, स्पष्टता कराते हैं दिव्य बुद्धि के बारे में, तो ये नई बात है, परंतु हम उसका उपयोग करें और नहीं इसके ऊपर डिपेंड है। और बहुत ही मतलब जैसे जनरस था वो जहां पर शेयर किया, आप शुरू करो जहां पर आप हो और सिर्फ सिर्फ अभ्यास करो, नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे ये तो मुश्किल है और बहुत ही उसका लेवल ऊंचा है ऐसा ऐसा विचार करेंगे। तो सिंपल है कि जहां पर आप है आप वहां से शुरू करो, तो जहां पर आप हो वहां से आप अभ्यास शुरू करो। और अगर आपको आधा मिनट भी मिलता है तो उसमें अगर आप ग्लिम्सिस अनुभव करते हैं तो ऐसे ही अलग अलग तो, और किसी ने कहा कि अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एक मिनट ही करना है हर घंटे में आधे घंटे में, और जितना आप अभ्यास का आनंद लेंगे उतना अभ्यास के परिणाम का भी आपको आनंद आएगा। और सुंदर कमेंट आई थी कि अगर हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास तो वो मोमेंटम गैदर करती है और हमारे अनुभव से हम खुद को और सभी को मदद कर पाएंगे। तो जैसे कि एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, एक एक स्टेप लेते जाओ तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और हम लक्ष्य के तरफ जाएंगे, लक्ष्य के तरफ जाते रहेंगे। जैसे कि बैडमिंटन कोर्ट होता है, तो मेरे मन में वो आया था जब मैं टीनेजर थी, तो जैसे ही मुझे याद आया तो मैं अपनी अभी की एज बोल के उस समय की एज एक्टिव हो गई थी। तो ये ईगो डेथ जो है वो बहुत ही सुंदर है, तो हमें ये अनुभव करना है। और ये सत्य है और भगवान के साथ ये गेम है, और मुझे शुक्रिया। और यस हमें भगवान चाहिए। ताकि हम राम को रावण को अच्छी तरह से समझे और रावण के ऊपर जीत पाए। एक कोट है, एक्सपर्ट वो मनुष्य है जिसने जिसने मिस्टेक्स की है और सीखता गया वो। और शुक्रिया सभी। कुछ एक क्वेश्चंस प्रशांत भाई फाइनल कमेंट्स के लिए प्रशांत भाई के पास जाएंगे। बहुत ही सुंदर, शुक्रिया मार्गरेट और कॉन्स्टेंटिना को, थैंक यू। और एक कोट था, तो सुंदर बात खेल के लिए है कि जस्ट खेलो, हमें खेलना है। और क्यों एक्चुअली मनुष्यों में खेलने की एक उत्तेजना होती है, बच्चों में होती है, क्योंकि हमें बनाया ही गया है खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि एक घंटा खेलना है और बाकी फिर काम करना है। जीवन एक खेल है और जितना हम हर चीज खेल समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। आप समझ रहे हैं गेम को, रूल्स को समझ रहे हैं, दूसरी साइड क्या हो रहा है, परंतु बॉटम लाइन है ये खेल है, सीरियस नहीं है। और हमारी तरफ एक बहुत सुंदर बात है, सभी अच्छे हैं और सभी चीजें ठीक है, तो पैनिक होने का कोई कारण नहीं है। हमारी दुनिया इमॉर्टल है और हर एक अंदर से अच्छा है। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है और जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मतलब जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको आनंद का अनुभव होता है। क्यों उनको आनंद का अनुभव होता है? कोई भी केस आप सुनो, नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब वो पॉजिटिव इमोशन अनुभव करते हैं, उसमें एक है ब्लिस, आनंद। ऐसा क्यों? और कुछ एक केसेस में वो दूसरे अनुभव में जाते हैं। 10% केसेस होते हैं जो नेगेटिव एक्सपीरियंस में भी जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी है वो ब्लिस का अनुभव करते हैं जैसे ही शरीर से बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि थियरी हम कह सकते हैं, हमारा जो नेचर है वो आनंद का है, आत्मा का नेचर ही आनंद है। परंतु जब हम वो पूरा जीवन वो मृत्यु के बारे में चिंता करता है, सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली वो सोना कलेक्ट करता रहता है और उसको लगता है कि मैं मृत्यु को डिले करूंगा, और जैसे वो केक्स खाता रहता है। और क्योंकि सोना खरीदता है तो उसकी और चिंता होती है, और ये छोटी छोटी एंजाइटी और पैनिक्स जो है खोने की, वो ये आनंद का एक्सपीरियंस ब्लॉक करता है और लास्ट में वो मर जाता है। और हम समझते हैं कि, और उसको पता चलता है शरीर के बाहर आने के बाद कि वाह वंडरफुल, मैं तो मरा नहीं हूं। तो उसको लगता है कि मैं तो इतना आनंदित हूँ बिना सोने के, तो एक वंडरफुल अनुभव होता है। तो उसका जो नेचुरल स्टेट है वो वापस आ जाता है आउट ऑफ बॉडी में आने के बाद। तो आर्टिफिशियल पैनिक जो कैरेक्टर की वजह था, चिंता, वो दूर हो जाती है। जब वो मृत्यु होता उस जब मृत्यु होता है तो उसको डर नहीं लगता है। कुछ एक केसेस में वो डॉक्टर को कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं खुश हूं। और डॉक्टर जब बॉडी में वापस लाने का प्रयत्न करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बाहर ही। ऐसे ही हर एक यहाँ पर सुंदर है, हर एक नोबल है और सत्य सुंदर है। ये जो आर्टिफिशियल पैनिक जो हमने क्रिएट किया है, हम बिन जरूरी दुख में फंस जाते हैं और हमें एक जैसे चांस मिलता है। तो ये हम यहाँ पर वही हम कर रहे हैं कि एक सच्ची ब्लिस का अनुभव करें बॉडी में रहते ही, बॉडी में बाहर की स्थिति का। और कंप्लीट कोई स्ट्रेंजर भी है उसके लिए भी हम, अगर कोई परिस्थिति है तो आप उसको हेल्प करेंगे, क्योंकि गहराई में हम हमारी नेचर प्यार की होती है, हेल्पिंग नेचर होती है। हमें सिर्फ उस स्पेस में आना है। और ये जो आर्टिफिशियल जो फैक्टर्स है और जो नेचुरल स्टेट है, जैसे मान लो खेल और लव प्यार, अगर आत्मा का नेचर ही प्यार है तो वो ही बाहर आएगा, तो वो बाहर आता जाएगा, हमारे लिए अच्छा है और प्लेनेट के लिए भी अच्छा है। जैसे कि कोई मृत्यु के बारे में चिंता करता है तो वो चिंता की वजह से वो ज्यादा नहीं जिएगा, लेकिन वो चिंता दूसरों को भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और हमारे पास अभी थाउजेंड्स और थाउजेंड्स मिसाइल्स है, जैसे 24,000 मिसाइल्स अलग अलग जगह पे है, क्योंकि उनको मृत्यु का डर है इसलिए मिसाइल्स क्रिएट करते हैं, अलग अलग प्रकार के वेपन्स बनाते हैं। वो पैराडॉक्स है, जितना हम खोजेंगे अपने आप को कि हम सेफ है तो उतना हमें अच्छा लगे। कुछ एक क्वेश्चंस कमेंट से तो हम ले लेते हैं, नहीं तो कल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस कल हम लेंगे। तो आपने जो बोला कि ब्लिस, तो क्या वो तब होता है जब ईगो डिसअपीयर होता है? तो ये जो केसेस हमने बात की, ईगो डेथ के बाद डिसअपीयर नहीं होता, इसके बारे में थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन जब वो आउट ऑफ बॉडी होते हैं तो ईगो जैसे कि बाईपास हो जाता है और तो उनको सिर्फ अनुभव होता है कि वो शरीर से कुछ अलग है, लेकिन आत्मा की आगे की यात्रा में उसका जो ईगो था वो कंटिन्यू करता है यात्रा में, लेकिन उस समय जैसे ईगो बाईपास हो जाता है। हाँ, अभी समझ में आया। तो कुछ पॉइंट्स आप बताएंगे अभ्यास के लिए कल तक, मनन चिंतन के लिए कोई आपका सजेशन है? हाँ, अगले 24 घंटे में अदृश्य एक्टर के अनुभव में आओ, जो ये मिस्टर यूनिवर्स जो कैरेक्टर रोल है, स्टार वॉर्स चल रहा है। उसमें आप वापस आओ और एक स्पष्ट वास्तविकता का अनुभव करो, कुछ एक मिनट्स अनुभव करो। तो ये अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये जो सेशन था वो बहुत ही एक सुंदर ज्ञान से भरा हुआ सेशन था, अच्छे अच्छे पॉइंट सीखने को मिले। तो हम एक ड्रिल सेट करेंगे बाप दादा की, और बाप दादा की दृष्टि का अनुभव करके फिर हम आज का सेशन उसके बाद एंड करेंगे, और सेशंस की रिव्यू करके एंड करेंगे बाप दादा की ड्रिल के बाद।